अतुलितबलधामं हेम शैलाभुदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। काकभुषुण्ड जी अपना पूर्व चरित्र सुनाते सुनाते बहुत ज्ञान की बात सुना रहे। मैंने किस प्रकार से अपने गुरु का अपमान शंकर भगवान के सामने उनके मंदिर में किया। मंदिर में हम लोग देखते हैं कि मंदिर की जो मूर्ति है ये तो पत्थर की बनी हुई क्या है। मंदिर की मूर्ति तो पत्थर की है, भगवान थोड़ा ही है इसमें। परंतु इस कथा से ये मालूम देता है कि भगवान पत्थर की मूर्ति में भी है, सब जगह है वो पत्थर की मूर्ति में भी है। मंदिर के अंदर ओम नमः शिवाय का मंत्र जप रहा था मैं, गुरुजी आए, मैं खड़ा नहीं हुआ तो मंदिर में से आकाशवाणी हुई, अरे गुरुजी का अपमान करता है। तो 10,000 जन्मों तक तरह तरह की योनियों में जाएगा, सांप बना फिरेगा, और भी कई योनियों में भटकता रहेगा। सांप की तरह तू बैठा रहा तो अजगर बनेगा, और किसी योनि का तो नाम नहीं लिया, एक अजगर सांप का तो नाम लिया। यदि मंदिर में भगवान नहीं होते, मूर्ति में भगवान नहीं होते, तो वो गुरु जी का अपमान कौन देखने वाला था। कहते हैं यदि भगवान है वो बोलते क्यों नहीं है, वो उस समय मुस्कुराते क्यों नहीं है, वो डांटते क्यों नहीं है, वो फटकारते क्यों नहीं है, तो एक जैसे रहते हैं। उसमें भगवान क्या चीज है, किस चीज को लेकर भगवान माने, क्या उसमें विशेषता है। तो सबसे बड़ी विशेषता तो उसकी यह है कि शास्त्रों ने कहा है कि भगवान का ये रूप है। दूसरी बात है ये रूप हमारी श्रद्धा को बढ़ाने में काम आता है। शास्त्रानुमोदित, ऋषि मुनियों के द्वारा सेवित और अपने अनुभव से ये प्रमाणित होता है, उस मूर्ति का हम ध्यान करते हैं हमको शांति मिलती है। कोई कहे कि भाई बाहर बरसात हो रही है कि नहीं हो रही है, कि हो रही है साहब, नहीं हम तो नहीं मानते, कैसे हो रही, बरसात होती है गीला होना चाहिए ना, बरसात है तो ये गीला नहीं हो रहा है। अरे बाबा आप पर छत है, छत बरसात रुकी हुई, बाहर जाके देखो हम आए ना बरसात से गीले हो गए, हम आपाद मस्तक गीले हो गए, कपड़े हमारे भीग गए, अच्छा अब बरसात हुई है। ऐसे ही संतों ने महापुरुषों ने ये विश्वास किया है कि मूर्ति में भगवान होते हैं। चूंकि हम लोग संसार के ही अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए एक अंदर ही बैठे रहने से, अपनी भावनाओं में रहने से, जो महापुरुष बरसात का आनंद लेकर आए तो हमको पता नहीं चलता। ऐसे जिन्होंने भगवान का आनंद का अनुभव किया है मूर्ति से, वो हमको पता नहीं चलता। तो अब आपने हमको गीले कपड़े बता दिए, देखो साहब हमारा बनियान गीली हो गई, चादर गीली हो गई, देखो हम आए ना आप ठीक, बरसात हो रही है। ऐसे ही भगवान मूर्ति में रहते हैं, इसका क्या पता कि अच्छे अच्छे संतों ने महात्माओं ने मूर्ति का पूजन किया है। एक बार वृंदावन में भगवान का एक मित्र था, वो भगवान को सखाई मानता था, उसकी उपासना यही थी, भगवान मेरे मित्र है, छोटेपन से भगवान को मित्र मानता था। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसा मानता है उसके लिए वैसा मैं हाजिर रहता हूं। तो वो क्या करता, अपने घर से बाहर निकलता और रात के समय में वो भगवान के साथ गिल्ली डंडा खेलता, गिल्ली डंडा खेलता और भगवान उसके साथ खेलते। पूरी रात होगी तब नहीं, संध्या के बाद और सोने से पहले। संध्या तो हो गई तो भगवान मंदिर में से आकर के खेलते थे उसके साथ। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान के अब गिल्ली डंडा खेलते हैं तो एक तो गिल्ली को उठा खेलने वाला होता, एक गिल्ली को पकड़ने वाला होता, उसको आउट करने वाला होता है। तो भगवान खेल तो लिए, अब पिदने का नंबर आया तो भगवान ने देखा कि अरे अब मेरा शयन आरती का समय हो गया, वहां नहीं मिलूंगा तो पंडे पुजारियों में हल्ला हो जाएगा, भगवान भगे भगे आ गए। भगवान आकर के अपने मूर्ति में विराजमान हो गए, आरती हो गई, शयन आरती। इतने में वो आ गया मित्र डंडा लेकर के, कहा मैंने अभी इसको दौड़े दौड़े देखा, पंडित जी इसको बाहर निकालो, ये तुम्हारे लिए पूजनीय है, मेरा ये मित्र है, ये इसका पिदने का नंबर आया तो भग करके आ गया और ये खुद तो अपनी बाजी पूरी खेल गया, खेल के अंदर देखो ये बहुत गलती करता है, हम तो इससे आज लड़ेंगे। पुजारी ने कहा अरे बदतमीज निकल जाए यहां से, बोलने की तुझे यहां सभ्यता ही नहीं, मंदिर के अंदर भगवान को तू तुकारे से बोलता, ये मंदिर है मंदिर, यहां भगवान के लिए हम नजर से नजर नहीं मिला सकते, आंख से आंख कैसे मिला है, और वो यहां तू तुकारे से बोलता है, गिल्ली डंडा खेलते पागल हो गया, चला जाए यहां से। देखा नहीं, वो तो रोते रह गया, मैं बहुत देर से इसके साथ खेल रहा था, मुझे बहुत पिदाया इसने, छका दिया, लेकिन अब इसके पिदने का नंबर आया तो भग करके यहां आ गया, आज मैं तो इसका बदला लूंगा। तो पंडित जी ने क्या किया, उठा करके उसके दो चार वही डंडा उसके मारा दो चार पीठ पर, रोता रोता निकल गया, पहले तो मेरे साथ खेल लिया, अब मुझे पिटवा दिया, ऐसा ही मित्र होता है क्या, वो रोते रोते गया है। इधर ठाकुर जी की आरती हो गई, सुबह वो भगवान को स्नान कराने का जब मौका मिला पंडित जी को, तो वो भगवान के कपड़े उतारने लगे, चिपक गए पीछे, कपड़ा उतरे नहीं, तो वो कपड़ा यूं करने लगे तो भगवान ऐसा किया, भगवान ने कहा कि महाराज ये क्या हुआ। भगवान ने कहा कल जो मेरा मित्र आया था उसको आपने जो डंडे की मारी है वो डंडे की लगी है मेरे, दिखने में तो उसके मारी, लगने में मेरे दर्द हुआ है, वो ये कपड़ा मेरा चिपक गया है यार, और आंख से भगवान के आंसू आए। अब वो जो पुजारी था इतना रोया, भगवान ने महाराज मुझे पता नहीं था, मैं तो आपको एक केवल मूर्ति मानता था, मूर्ति पत्थर की मूर्ति है इतना ही मानता था, अब मेरी भक्ति में मैं बदलाव लाऊंगा। भगवान ने कहा कि तू रोज मेरी सेवा करता है, मुझे जगाता है जगने से लेकर के और शयन तक तू मेरी आरती करता है, पूजा करता है, सेवा करता है, अंदर तेरे अंदर यही भावना नहीं आई कि भाई मंदिर में तू पत्थर की करता है कि भगवान की करता है, तेरे से तो अच्छा वो था मित्र जिसने मुझे यहां आकर के और ललकारा के तू गलती करके आया है, उसने मुझे मूर्ति के अंदर मेरा रूप का दर्शन किया है, और एक तू है इतनी सेवा पूजा करने वाला भी तू मेरे को मूर्ति के अंदर देख नहीं सका। कहा महाराज गलती हो गई, अपराध हो गया, अब आइंदे ऐसा नहीं करूंगा। भगवान ने कहा यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो उसके घर जाओ, उसको यहां बुलाओ और वो मेरा मित्र है, प्रेम से उसको खिलाओ पिलाओ, उससे क्षमा याचना करो। उस बच्चे को बुलाया और वो पंडित भगवान के सामने उस बच्चे के पैरों में गिर गया। बच्चे को खिलाया पिलाया, बच्चे को कहा भाई अब तू प्रसन्न हो जा, तब भगवान प्रसन्न होंगे। तो भाई मूर्ति के अंदर भगवान है, कि जब मूर्ति सब जगह भगवान है तो फिर मूर्ति पूजने की जरूरत क्या है, भगवान तो सब जगह है। तो सब जगह भगवान है ये बात आपके मन में कब आती है, जब मूर्ति में पूजा होने लगती है ना, तब आपके मन में आता है अरे भगवान तो सब जगह, क्यों घंटा झालर बजाते हो। यदि घंटा झालर नहीं बजती है उस समय में ये भावना थोड़ी आती कि भगवान सब जगह। उस वक्त तो हमें हमारे ख्याल याद आते हैं, ये जाना है, ये करना है, वो करना है, इधर भगवान की तरफ वृत्ति नहीं जाती। और मंदिर में घंटा झालर बजते हैं, पूजा होती है, जन्माष्टमी उत्सव होता है, गणेश महोत्सव होता है, राधाष्टमी होती है, अमुक अमुक उत्सव होते हैं, ओ हाँ साहब आज भगवान की, अब आज गणेश महाराज की चतुर्थी है साहब, तो क्या हो गया भगवान को याद आए आज गणेश चतुर्थी है, अब राधाष्टमी है साहब, अब ये त्योहार है, अब ये त्योहार है, अब वो है, अब वो है। तो काकभूषण जी कहते हैं कि उस मंदिर के अंदर से आकाशवाणी हुई, तब फिर पंडित ने देखा, मेरे गुरुदेव ने देखा कि अरे ये तो मारा जाएगा, तो वो भगवान के चरणों में गिर गया, शंकर भगवान के, तब वहां दोबारा आकाशवाणी हुई और कहा कि इसको जन्म तो अवश्य मिलेंगे ही, लेकिन मेरे सेवा की है और अयोध्या में ये जन्मा था, और हे ब्राह्मण देवता तुम्हारी उस पर कृपा है, इस कारण से सहन कर लूंगा। इस कारण से जन्मते मरते इसको कष्ट नहीं होगा, ये जहां रहेगा वो स्थल बड़ा दिव्य होगा, ये संसार में सब जगह जा सकता है, जहां कोई नहीं जा सकता वहां भी ये जा सकता है, अप्रतिहत गति होगी, इसकी गति को कोई रोकने वाला नहीं होगा, ऐसे ऐसे इसको वरदान, मुझे वरदान मिल गए। अब वो 10,000 जन्म मेरे बीत बात गए, सब खत्म हो गया, उसके बाद मैं ब्राह्मण बना और मैं लोमस ऋषि के यहां आ गया सुमेरु पर्वत पर। मेरे मन में भगवान के सगुण साकार लीला में बड़ा प्रेम हो गया। दो कारण था, एक तो भगवान शंकर ने ऐसी बात हमको आकाशवाणी में कही तो देखा कि तो साकार भगवान तो बड़े विचित्र है, अयोध्या में भी रहा था, तो ऐसे कुछ भी कई कारण थे, जिन सब कारणों से मेरी राम जी के चरणों में प्रीति हो गई, अब साकार में प्रेम हो गया। लोमस ऋषि के चरणों में जाकर प्रणाम किया तो बड़े प्रेम से पूछा, अरे आओ ब्राह्मण देवता, आओ आओ आओ, अरे तुम कहां से आए रे, कौन हो तुम, किस लिए आए। तो हे गरुड़ जी महाराज, मैंने उनके सामने बड़ी नम्रता से कहा कि कृपा निधि, आप सब जानते हो, हे भगवान मुझे सगुण ब्रह्म के विषय में समझाइए, सगुण ब्रह्म की लीला सुनाइए। तब लोमस ऋषि ने मुझे भगवान राम की कथा सुनाई, जैसा मैंने पूछा वैसा सुनाया। सुनाते सुनाते वो मुझे साथ साथ में ब्रह्म ज्ञान भी देने लगा, देखो ये भगवान है ना, जैसे हस्त चरणार बिंदो से युक्त है, हाथ है, पैर है, मस्तक है, ये तुमने सगुण रूप सुना, ऐसे भगवान निराकार भी है, वे भगवान अज है, अद्वैत है, अकल है माने कलाहीन है, कोई उनमें क्रिया नहीं होती, वो नाम रूप से रहित है, वे अखंड है, वे अनुपम है, वो मन बुद्धि आदि इंद्रियों से अतीत है, निर्मल है, निर्विकार है, निरवधि है, निरुपाधिक है, ऐसे वो निर्गुण की बातें करने लगे। और साथ साथ में यह भी कहने लगे कि देखो सोते ताय तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावई वेदा, सुनो देखो काकभूषण, सुनो अभी काकभूषण नाम तो है नहीं, तो काकभूषण जी कह रहे वो मुझे कहने लगे कि देखो निर्गुण में और सगुण में कोई भेद नहीं है। अरे पानी की एक लहर आती है, एक पानी सीधा यूं रहता है, एक पानी में लहर आती है, क्या फर्क है उनमें, पानी में और लहर में क्या फर्क है, कोई भेद नहीं। ऐसे करके मुझे निर्गुण और सगुण के विषय में एकता करके बहुत समझाया, लेकिन कितना ही समझा दो मैंने तो निर्गुण का सगुण का आग्रह पकड़ लिया कि नहीं नहीं निर्गुण निर्गुण तो होता ही नहीं है, ये सगुण ही है बस, है जो सगुण है। निर्गुण मत मम हृदय न आवा, मेरे हृदय में निर्गुण मत उतरता ही नहीं था। मैंने कहा गुरुदेव आपकी पगचंपी करूं, आपको प्रणाम करूं, आपके आपको हाथ जोड़ूं, आपके चरणों में शीश नवाऊं, आप तो मुझे सगुण ही बताओ महाराज, ये निर्गुण का फंदा मेरे गले में मत डालो, क्योंकि मेरा मन है वो मछली के समान है और भगवान राम की भक्ति मुझे जल के समान लगती है। सगुण के अलावा यदि आप मेरे मन को निर्गुण में ले जाओगे तो जैसे मछली तड़फड़ाती है ऐसे मेरा मन तड़फड़ाएगा। काकभूषण जी इसी को अभिमान बोलते हैं, साधन का अभिमान। जिस आदमी ने कम साधन भजन किया है ना उसको साधन का अभिमान ज्यादा होता है। देखो अभिमान जो होता है वो अभिमान कमी के कारण से होता है। किसी आदमी के पास धन का अभिमान है वो तो समझता है धन ज्यादा है इसलिए अभिमान, धन ज्यादा है मेरे पास इसलिए अकड़ में आया हूं, लेकिन उसके पास धन की कमी है इसलिए वो अभिमान करता है। विद्या का घमंड उसको जोता है जिसके पास विद्या की कमी है। वास्तव में अभिमान जो आ जाता है वो अभिमान गुणों की कमी के कारण से आता है। मैंने कहा महाराज जैसे मछली जल से अलग नहीं हो सकती ऐसे मेरा मन सगुण से कैसे अलग होगा, किमि बिलगाय मुनीस प्रवीणा। इसलिए हे महाराज दया करो, ऐसी दया करो कि आप मुझे उपदेश दो सगुण का और मैं अपनी आंखों से भगवान को देखूं। देखो आपको एक बात बताएं, सेठ जी की कही हुई बात, संतों की कही हुई बात, बरसात आती हो और भगवान की कथा चलती हो ना वो कथा बहुत सार्थक होती है, बहुत पुण्य वाली होती है। बरसात होती हो और कथा चलती हो, बरसात होती हो और कीर्तन होता हो, बहुत लाभप्रद होता है। सेठ जी तो क्या करते बट वृक्ष के नीचे, ऐसा सुना बरसात आती तो खूब कहता बैठे रहना बरसात में, भीग जाए तो भीग जाएंगे ऐसा कहते थे वो, फिर कीर्तन करते और वो बड़े प्रेम से कथा करते कीर्तन करते। तो बड़ी अच्छी बात चल रही है। तो काकभूषण जी कहने लगे मैंने उनको कहा कि महाराज मुझे भगवान दर्शन देवे ऐसी आप कृपा करके हमको सुनाओ, भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाए, आंखों से मेरे झर झर प्रेम से आंसू आते रहे और मैं सगुण रूप को देखूं। अच्छा अच्छा सुनाते हैं, तुम्हारी सगुण में यदि निष्ठा है तो सुनाते हैं। तो फिर मुझे भगवान की कथा सुनाई और कथा सुना करके कहा कि देखो तुम जो एक सगुण का ही आग्रह रहे, सगुण कहीं से तो आया तो होगा ना, ये सगुण ब्रह्म कौन सा है? जो निर्गुण होता है वही तो सगुण में आएगा। कहना ही नहीं महाराज। पुनि मुनि कही हरि कथा अनूपा, खंड सगुण मत अगुण निरूपा। तो जब उन्होंने इस प्रकार से सगुण मत का खंडन किया, निर्गुण को रखा, तो मैंने भी क्या किया, तब मैं निर्गुण मत करी दूरी, सगुण निरूपम करी हट भूरी। फिर मैंने निर्गुण का खंडन किया और फिर मैं सगुण के अंदर आ गया। नहीं नहीं महाराज, निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपम करी हट भूरी। मैंने निर्गुण मत को तो दूर किया और वापिस में सगुण के अंदर ही आ गया। नहीं नहीं महाराज, सगुण ही बढ़िया है। पूरी बात सुनो, सगुण की पूर्णता निर्गुण के साथ में है। कन्हैया ही साहब, हम तो नहीं मानते। तो उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मैंने उनके हर बात का उत्तर का जवाब, प्रश्न उत्तर, ये कुतर्क होता है। तब बोलते बोलते लोमस ऋषि के मन में क्रोध आ गया। क्रोध से देखने लगे, तब गरुड़ जी उनकी आंखों की त्योरी देखी ना, तो मेरे मन में आया कि ये ऋषि के मन में क्रोध आ गया। और बात भी सही है, बार बार कोई संघर्षण करते हैं तो अनल प्रकट चंदन ते होई, चंदन से भी आग पैदा हो जाए। देखो ये चंदन की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी हो, चंदन की लकड़ी तो ये भी चंदन और ये भी चंदन, और इनको यूं घिसेंगे तो आग पैदा हो जाएगी। ऐसे ही भाई, कितने ही अच्छे ऋषि हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, लेकिन ज्यादा उनकी बात को काटोगे, सच्ची बात को काटोगे, कुतर्क करोगे, तो भाई वहां क्रोध पैदा हो ही जाएगा। जब उनके मन में क्रोध पैदा हुआ, तब देखो मेरा मन डामाडोल हुआ। मैंने कहा कि मैंने मन में सोचा, अरे निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म सब जगह व्यापक है, ऐसा कहने वाले के मन में क्रोध कहां से आया? एक निर्गुण निराकार के अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर क्रोध कैसे आया? द्वैत के बिना क्रोध कैसे आ सकता है? द्वैत भाव माने भगवान निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन, और मैं देखो ये मेरा अपमान करता है, मेरी बात को काटता है, ये क्या बात हुई? क्रोध की द्वैता बुद्धि बिनु, द्वैत की बुद्धि हुए बिना क्रोध नहीं आता, और द्वैत की बिनु अज्ञान, और एक निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा ही है, इसके अलावा कुछ भी भाव होता है वो अज्ञान से ही होता है, द्वैत अज्ञान से ही पैदा होता है। और ये जीव है, ये माया के वशीभूत है, परिच्छिन्न है, ये कभी ईश्वर के समान हो सकता है क्या? ये फालतू निर्गुण निराकार की बात करते हैं। कबहु के दुख सब कर हितता के, क्या जिसके पास सब कुछ हित की सामग्री हो, उसके दुख हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या परस मणि के रहते हुए कोई दरिद्री रह सकता है? नहीं रह सकता। क्या दूसरे के साथ द्वेष रखने वाला आदमी निशंक रह सकता है? नहीं रह सकता। क्या कोई कामी पुरुष निष्कलंक रह सकता है? नहीं रह सकता। क्या किसी ब्राह्मण का अहित कर दे उसका वंश रह सकता है? नहीं रह सकता। क्या किसी दुष्ट के साथ संगति करे तो उसकी बुद्धि ठीक रह सकती है? नहीं रह सकती। जो परस्त्री गामी है, क्या उसकी शुभ गति हो सकती है, कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। जो परमात्मा को जानने वाला है क्या उसको संसार में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? क्या भगवान की निंदा करने वाला कभी सुखी होता है? नहीं होता। क्या भगवान के चरित्र को कहने और सुनने वाले व्यक्ति के हृदय में पाप रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? और बिना पाप के रहते हुए क्या किसी का अपयश हो सकता है? अपयश सदा पाप के फल से होता है, नहीं हो सकता। क्या भगवान की भक्ति के समान कोई संसार में ऐसा लाभ है? नहीं है। लाभ तो भगवान की भक्ति ही है। और मानव शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भजन नहीं करता, क्या इसके समान कोई नुकसान है, घाटा है कि नहीं है? क्या दूसरे की चुगली करना, दूसरे की बुराई करना, इसके समान कोई संसार में पाप है कि नहीं है? ऐसे मैं बहुत देर तक अनुमान लगाता रहा और वो मुझे जो बात सुनाते थे लोमस ऋषि, वो सब बात मुझे अप्रिय लगने लगी। वो निर्गुण का मत करें, पुनि पुनि सगुण पक्ष में रूपा, मैं बार बार सगुण का निरूपण करूं। तब अंत में मुनि को क्रोध आ ही गया। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुझे ऐसा नहीं समझा था। बार बार मैं तुझे समझाता हूं, मेरी बात सुनता ही नहीं है। हर बात के ऊपर तो उत्तर प्रति उत्तर, उत्तर प्रति उत्तर देता है, सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता। अरे संत जनों की बात पर विश्वास करने से आपको लाभ होगा। संत जनों की बात पर विश्वास करो, कौवे की तरह हर बात के लिए कहो। ऐसा क्यों, जैसे कौवा कौं कौं करता है, ऐसे तू कौवे की तरह से बोलता है। जा, तू अभी का अभी चंडाल पक्षी कौवा हो जा। तो ऐसा कौवा होने का कहा तो मेरे मन में कोई फर्क नहीं पड़ा, देखते देखते कौवा हो गया। ब्राह्मण शरीर सबसे ऊंचा, सृष्टि में सबसे ऊंचा शरीर, और उसमें फिर पक्षियों में सबसे नीचा कौवा बना दिया, एकदम कौवा हो गया। देखो काक भूषण जी है ना, ये कोई कौवा शरीर है तो ये ऋषि के साप की सत्यता के लिए बने। ये कोई कौवा कुल में पैदा होके नहीं हुए कि इनके बाप दादे कोई कौवे रहे होंगे, बस उनको जो है साप दे दिया, कौवे हो गए, उसी शरीर से कौवे हो गए। पर क्या बताएं गरुड़ जी, महापुरुषों ने इतना फटकारा, धमकाया, पर मेरे मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं हुआ। नहीं कछु भयन दीनता आई। मैं उसी समय कौवा बन गया, उनके चरणों में लुढ़क गया और प्रणाम करके उड़ गया है। देखो पार्वती, अब शंकर भगवान बीच में बोलते हैं, देखो पार्वती, जिनका भगवान के चरणों में प्रेम होता है उनका ऐसे ही स्थलों पर परीक्षण होता है। भगवान के प्रेम की पहचान क्या, कोई आफत आए तब? अपने तो आफत आती तो भगते हैं, आफत बुरी लगती है, अपयश बुरा लगता है, घाटा बुरा लगता है, और बीमारी बुरी लगती है, मान बढ़ाई में धक्का लगता है तो बुरा लगता है। पर भाई जो भगवान के चरणों में प्रेम करने वाले होते हैं उनका भक्ति का ज्ञान यही होता है। थर्मामीटर है ये। तो काक भूषण जी के मन में आया कि अरे ये भी तो भगवान ही है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, मैं उड़ तो गया, मेरे मन में ये बात आई कि भाई बिचारे ऋषि का, लोमस ऋषि का कोई दोष नहीं है, सबको भगवान प्रेरणा देते हैं। भगवान मुझे कौवा बनाना चाहते थे, तभी तो इनके मन में आई बात, भगवान ने मेरी प्रेम परीक्षा ली है, भगवान ने मुझे अपना मान लिया है, भगवान ने मेरी बुद्धि को फेर दिया, और जहां से मैं उड़ा था ना, वहां से वहां थोड़ी दूर बैठ के गुरु महाराज को देखता रहा, लोमस ऋषि को देखता रहा। ऋषि ने मुझे देख करके देखा कि अरे ये तो कुछ बुरा मानता ही नहीं है। मेरे पर ऋषि की बड़ी कृपा हुई, उन्होंने मुझे बुलाया, सादर मुनि ले ले आजा 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 पक्षी आजा। तो मैं उनके पास आ गया। अब ऋषि के भी आंखों से आंसू आए, मैं उनके चरणों में गिर गया। फिर मेरे सिर पर हाथ फेरते फेरते उनका, अरे काग तो भगवान के बाल रूप का ध्यान कर, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो काग भुसुंड, बहुत अच्छे लगते हो। हमने तुमको श्राप दिया, तुम्हारे मन में क्रोध नहीं आया, तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं आया, बहुत अच्छे लगते हो। देखो तुम बालक रूप भगवान का ध्यान करना, क्योंकि मैं भी बालक रूप भगवान का ही ध्यान करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान का बाल स्वरूप। फिर लोमस ऋषि ने वहां पर मुझे रामचरितमानस सुनाया और मैंने बड़े प्रेम से वो रामचरितमानस सुना। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। वो लोमस ऋषि मुझे कहने लगे कि देखो काक बसुन जी, रामचरितमानस तो एक सागर के समान है और वो मैंने भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त किया था। तुम्हारी भगवान राम में अतिशय प्रीति है, इसलिए मैं तुमको ये रामचरित्र सुनाता हूं। जिनके मन में भगवान की भक्ति नहीं हो, उनको ऐसी प्रेम की गूढ़ बातें नहीं सुनानी चाहिए, क्यों? इससे वे लोग दुरुपयोग करते हैं। और बार बार मुझे प्रेम से समझाया कि देखो बड़े आदमी यदि क्रोध करे ना, तो छोटे आदमियों को बराबरी नहीं करनी चाहिए। बड़े आदमी बेकसूर भी डांट देना तो सहिष्णुता आनी चाहिए, सहिष्णुता। आजकल तो लोग कहते हैं पिताजी आप बिना मतलब डांट दिए हमको, बराबर में बिना मतलब डांट दिया, हमने तो कोई कसूर किया ही नहीं, आपने यूं ही डांट दिया। अरे भाई ऐसे कैसे बोलते हो, तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे पिता हैं, ऐसे कभी नहीं बोला। बिना मतलब ही डांट दे तो अच्छा ही है। डांट का अर्थ क्या हुआ कि ऐसी गलती फिर मत करना। जिस बात को बिना हुए ही डांटते हैं उसका अर्थ यह है कि ऐसी गलती जिसके लिए हम डांट रहे हैं, ये गलती यदि नहीं की है तो आगे मत करना, और की है तो डांट सुनो। डांट सुनने से उस गलती का पाप नष्ट होता है। बहुएं बोलती हैं सासुओं से कि आप बिना मतलब मेरे को डांटती रहती हो, हम कोई समझदार नहीं है क्या, आप ही में ही समझ है क्या, घर में केवल आप ही रहते हो क्या, हमको घर का हित नहीं दिखता है क्या। सासू जी बोलती है अरे कैसी लड़की आ गई तू यहां। कहते सासू जी माता जी आप भी तो कहीं से आई हो, आप यहां जन्मी थोड़े ही हो, आप भी आए मैं भी आई, यदि आने वाला अच्छा नहीं होता तो आप भी तो आने वाली हो, आप भी यहां रहने वाली तो नहीं हो। एक बहू ने बताया कि मेरी सासू ने मुझे डांटते हुए कहा कि देख तू आई थी तब ये मकान साथ में लेके आई थी क्या, तेरे बाप ने बनाया है क्या ये कमरा, ये मकान तेरे बाप ने बनाया है क्या। तो महाराज एक दिन हुआ दो दिन हुआ तो मैंने भी कह दिया कि सासू जी को कह दिया कि आपके बाप ने बनाया है क्या, मैं आई हूं जिस ढंग से उसी ढंग से आप आई हो। तो कहा कि भैया ऐसे बराबर में नहीं बोलते। तो क्यों नहीं बोल रहे, वो बोलते हैं तब क्या करें। अरे वो बोलते हैं उनको बोलने का हक है, फिर हमारा क्या हक है कि आपको आदर के साथ सुनने का हक है, आपको सुनिए प्रेम से, उनकी बात का बुरा न मान करके सुनिए, वो कहे वो बात सुननी चाहिए। ये सब बातें मुनिमोई विविध भांति समझा, मुझे बहुत तरीके से समझाया उन्होंने कि देखो बड़े आदमी का क्रोध होता है उसको सहन करना चाहिए। निज कर कमल परसि मम शीसा, मेरे सिर पर खूब हाथ फेरा उन्होंने, मैं कौवा शरीर वाला नीचे गिर गया, मेरे शरीर पर हाथ फेरा। ऋषि की आंखों में फिर आंसू आ गए और कहा कि देखो जैसे आज मैं तुम्हारे सिर पर हाथ फेरता हूं, इसी प्रकार से भाई तुम्हारे भगवान भी तुम्हारे सिर पर हाथ फेरेंगे। सदा राम प्रिय हो तुम सुभगुन भवन अमान, काम रूप इच्छा मरना ज्ञान विराग निधान। आशीर्वाद दिया, तुम्हारे मन में राम जी के प्रति प्रेम पैदा होगा, राम जी के तुम परम प्रिय होगे, और जितने वर्षों तक कल्पों तक तुम यहाँ जीना चाहोगे तब तक तुम जियोगे, चाहे जैसा रूप बना सकते हो। हमने तुमको कौवे के लिए कह तो दिया, लेकिन यदि तुम बदलना चाहो ये रूप तो बदल सकते हो। काम रूप तुम अपने मन में आज जैसा रूप बना लेना, और इच्छा मरण तुम्हारा मरना भी तुम्हारी इच्छा पर ही है, और जिस आश्रम में तुम रहोगे, अब देखो गुरु के कठोर वचन सुने ना तो आशीर्वाद का ढेर लग गया। बड़े आदमियों का कोई कोप सहन कर लेता है, माँ बाप का सास ससुर का कड़वा वचन सहन करता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा की वर्षा होती है। जाओ तुम जिस आश्रम में रहोगे वहां पर कोई अविद्या नहीं रहेगी, कोई अज्ञान नहीं रहेगा, एक योजन दूर तक, एक योजन चार कोस तक वहां अविद्या नहीं रहेगी। तुम वहां पर बैठ करके राम जी का रहस्य को समझ लोगे, बैठ करके ध्यान लगाओगे भगवान का ये चरित्र क्यों है, भगवान ने बाल लीला क्यों की, रावण को ही मारना था तो वो किसी और कोई रूप में एक साथ प्रकट होते न मार देते, हिरण्यकश्यप को मारा ना ही, हिरण्यकश्यप को मारा भगवान ने नृसिंह रूप में तो तत्काल प्रकट हो मार दिया, कहीं पैदा थोड़ी हुए। ऐसे ही रावण को ही तो मारना था, ये बाल लीला की, फिर विश्वामित्र जी के साथ गए, फिर धनुष तोड़ा, फिर अयोध्या आए, फिर वनवास गए, फिर सीता जी का हरण हुआ, फिर सीता जी की खोज हुई, और फिर जो है सेतु बंद रामेश्वर बना, फिर लंका के ऊपर चढ़ाई की, फिर मरा, फिर राजगद्दी हुई, इतनी जरूरत क्या थी, लव मारना ही है रावण को मार देते, पर नहीं, राम जी का एक एक चरित्र है वो बड़ा रहस्यमय है। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना, वो सब क्या हुआ तुम्हारे मन में अपने आप प्रकट हो जाएंगे। हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दिया। अब जो है उसी समय में फिर आकाशवाणी और हो गई। अब ये आकाशवाणी काकभूषण जी किसके द्वारा हुई मुझे पता नहीं, पर मैं तो यही मानता हूं कि भगवान शंकर की कृपा से हुई आकाशवाणी हुई। अरे सुनो सुनो, एवमस्तु तव वच मुनि ज्ञानी, लोमश ऋषि जी सुनो, आपने जो इसको आशीर्वाद दिया है वो ऐसा ही होगा, ये मेरा परम भक्त है, मन से वचन से कर्म से ये मेरे से अभिन्न होकर प्रेम करता है, मेरा भक्त है, आपने इसको इतना आशीर्वाद दे दिया, मैं बहुत खुश हूं। ये आशीर्वाद मिल गया तब मेरे सारे संदेह दूर हो गए। बार बार मैंने ऋषि को प्रणाम किया, लोमस ऋषि को, और फिर मैं यहां आकर के रहने लग गया हूं। देखो गरुड़ महाराज, मुझे यहां रहते हुए 27 कल्प बीत गए, बस मेरा एक ही काम है, इधर रामचरितमानस कथा करते करते कथा समाप्ति होती है, उधर कथा दूसरी चालू कर देता हूं। ऐसा नहीं कि अब कथा कर तो दी भाई, वही तो राम जी हैं, वही बाल्यावस्था है, वही भगवान के वनवास की लीला है, बार बार क्या कहें, ऐसा मन में ही नहीं आता। जितनी बार मैं कथा कहता हूं उतनी बार मुझे कथा में कुछ अलौकिकता मालूम देती है। यहां पर बैठा रहता हूं, और जब जब भगवान अयोध्या पधारते हैं, अवतार लेते हैं, तब तक क्यों भगवान का तो काम है प्रति अवतार, हर त्रेता के अंदर भगवान अवतार लेते ही है राम रूप से, तो मैं वहां चला जाता हूँ और बाल लीला देख दाख करके वापिस ही आ जाता हूँ। ये मैंने मेरी कथा सुनाई जो आपने हमसे पूछा था, ये कागज देह कैसे मिला, ये आश्रम में शांति क्यों है, और आपका ये काग शरीर है इसका क्या रहस्य है, ये हमने आपको बता दिया। तो साहब इस कौवे का शरीर क्या रखना जी, अच्छा सा हंस का शरीर रखते एकदम अच्छा शरीर सफेद शरीर। तो ना ना ना, ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पदने, निज प्रभु दर्शन पायउ गए सकल संदेह। ये शरीर इसलिए प्रिय है कि इस शरीर से मुझे भगवान के दर्शन होते हैं, इस शरीर से मुझे एक ऋषि की कृपा मिली है, इस शरीर से मुझे भगवान के चरणों में अनुराग हुआ है, इस शरीर से चुपचाप मैं अयोध्या जाकर के वहां कौएं के बीच में बैठ जाता हूं, कोई मुझे पहचानता नहीं है। लोग तो चाहते हैं हमारी पहचान हो, ना कोई मुझे पहचानते नहीं है, साधारण कौ में बैठ जाता हूं, भगवान मेरे साथ खेलते हैं तो उनके माँ भाई देखते हैं, अरे ये तो बच्चा अभी खेल रहा है कौवे के साथ खेल रहा है, किसी को भी पता नहीं कि मैं कौन हूं। और देखो मेरे मन में बार बार आता है कि ऋषि ने मुझे शाप दिया, भक्ति पक्ष हठिकार है, मैंने भक्ति का हट करके पक्ष लिया, ऋषि ने मुझे शाप दिया, शाप देने के बाद वरदान कितने मुझे मिल गए, कितने वरदान मिल गए। इसलिए तुमने कहा ना कि ज्ञान भक्ति जे असी भक्ति जानी परिहरही केवल ज्ञान हेतु श्रम करे, अरे भक्ति का तो कैसे भी हो सहारा ले हो, ज्ञान के लिए करते हैं वो व्यर्थ परिश्रम करते हैं, काम धेनु को तो छोड़ दे और घर में आग का दूध पिएंगे साहब, आंकड़े का दूध, और गाय का दूध है कुछ नहीं, आंकड़े का दूध। जेते जड़ काम धेनु गृह त्यागी खोजत आक फिर पहलागी, ऐसी ऐसी बात है भाई। वे बड़े जो है सत पुरुष होते हैं जो भगवान की भक्ति को छोड़ करके और दूसरी जगह सुख ढूंढते हैं, यहाँ संसार में स्त्री में सुख है, पदार्थ में सुख है, धन में सुख है, मान में सुख है, बड़ाई में सुख है, इनमें जो सुख ढूंढते हैं वो वास्तव में महासठ है, वो बिना नौका के सागर को पार करना चाहते हैं। गरुड़ जी कह बड़े प्रसन्न हो गए, और क्या सुनना चाहते हो गरुड़ जी महाराज, कि अब मेरे और भी कई प्रश्न हैं। तो साहब अब और प्रश्न है तो उन प्रश्नों को अब फिर कल कहना, आज तो अपने यहीं तक आपको उत्तर सुन लेना है। श्रीमन् राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री राम 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 सीता राम राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री राम राम श्री राम। राम
राम श्री राम राम श्री 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 राम
राम श्री राम 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 सीता
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 राम राम श्री राम 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 सीता
राम श्री राम 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 सीता
सियावर राम चंद्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाले
की जय
उमापति महादेव
की जय
पवन सुत हनुमान
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं
की जय।